हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते हमने श्लोक लिया था और कुछ मुद्दे विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए संक्षिप्त रूप में फिर से इस श्लोक को हम लेंगे। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युजुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन द्वारा कहा गया अब ये पहला श्लोक, जिसमें हमने चर्चा की कि अर्जुन भगवान को कृष्ण इस नाम से पुकार रहे हैं और कृष्ण नाम का अर्थ सर्व आकर्षति इति कृष्ण, आकर्षण शक्ति किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में रस तत्व की वजह से है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी प्रकार की चीज से आसक्त रहते हैं तो उसमें कोई ना कोई रस ढूंढते हैं और भगवान है रसो वैसह, सभी रसों के स्रोत हैं भगवान। तो हमने कौन सा उदाहरण लिया था, भगवान ने अपने विभिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ, कई तो अभक्त भी थे, जब किया। जब कंस की रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया तो विभिन्न प्रकार के भगवान के संपर्क में आए हुए भक्त अभक्त दोनों कितने प्रकार के रस, एक एक याद है सबको? नंबर याद है तो 10 प्रकार के रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, दास्य रस, शांत रस, सख्य रस। तो 10 प्रकार के रस भगवान ने आस्वादन किया और आदान प्रदान, और केवल भगवान आस्वादन करने के लिए ही नहीं इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, बल्कि भगवान अज्ञात सुकृति इनमें पैदा करना चाहते थे, इन सब व्यक्तियों में, ताकि ये भगवान की भक्ति में लग सके, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो, और इसके द्वारा इनका उद्धार हो सके। और हमने चर्चा की भगवान श्री कृष्ण यदि जो सभी रसों के स्रोत हैं उनकी तुलना प्रह्लाद महाराज ने चुंबक से की है और हम लोहे के समान। आध्यात्मिक रस जो कि मुक्तिस्पद है, भौतिक रस जो कि बंधनास्पद है, और इसमें यदि आपको याद होगा तो हमने ये उदाहरण लिया था, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक पौधा जो कि किस प्र... इसमें यदि आप देखो इस चित्र में तो अंदर अटका हुआ एक कीड़ा, वो बंद है, अंदर एक कीड़े को पकड़ लिया है इस पौधे ने पहले ही, दिख रहा है इस वाले में, एक अंदर वो पहले से अंदर एक कीड़ा फंसा हुआ है। तो ये पौधा कैसे आकर्षित करता है, इसके अंदर बहुत एक सुगंधित मधुर रस का उत्पादन होता है और इसके चित्र हमने आपको दिखाए थे। इस प्रकार से ये खुलता है, कीड़ा इस प्रकार से आकर्षित होता है उस रस का आस्वादन करने के लिए, अंततः फिर ये नमस्कार करता है ऐसे और फिर वो कीड़ा इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो ये उदाहरण हमने क्यों लिया था, अचानक ये डिस्कवरी चैनल यहां पर क्यों चालू हो गया, यहां पे सेल्फ डिस्कवरी चैनल चल रहा था हाँ क्यों लिया ये उदाहरण? हाँ क्या? भौतिक जगत में ऐसा ही कुछ चलता है, और ऐसा ही क्या चलता है कि इस प्रकार से ये भौतिक संसार, इस भौतिक संसार के पदार्थ, इस भौतिक संसार की स्थितियां, सब प्रकार के जो नियम हैं, वो इस पौधे के समान है। यदि इस भौतिक संसार को उस वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे की तुलना दें, तो ये भौतिक संसार का जो आनंद है उसकी तुलना किसे देंगे हम? उस अंदर के रस को। तो कीड़ा जब अंदर उस रस का आस्वादन करने के लिए जाता है, तो अंदर वो बैठने के वजह से वो पौधा बंद होता है। कीड़े के बैठने के वजह से और उस रस का आस्वादन करने के वजह से वो बंद होता है, और वो जो रस है वो उसका डाइजेस्टिव जूस है उस पौधे का। वो उस कीड़े के लिए बनाए नहीं गए। वो कीड़े को लगता है कि ये मेरे लिए, ये जो इतना दानवीर ये पौधा मेरे लिए उत्पादन करता है इतना सुगंधित मधुर रस का, नहीं, वो उसी कीड़े को पचाने के लिए जो उसको जूस की आवश्यकता होती है वो रस का उत्पादन करता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार का जो आनंद है वो इसी प्रकार का है कि दूर से बहुत सुगंधित मधुर अच्छा हमारे लिए। कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अरे ये सारा जो इंद्रिय भोग भगवान बनाए किसके लिए? हमारे लिए। एक व्यक्ति मुझसे हर समय इस मुद्दे पर विवाद किया करता था कि अरे देखो तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी इंद्रियों में सारी शक्तियां हैं, तो क्यों नहीं भोग करना चाहिए? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, ये सब कुछ किसने, भगवान ने तुम्हें क्यों दिया? मैंने पूछा क्यों दिया? इंद्रिय भोग करने के लिए और क्या? तो अंग्रेजी की एक कहावत कहा करता था, यूज इट और लूज इट। तो मैंने कहा हां यही भगवान बोलते हैं शास्त्र में, यूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और एल्स यू लूज इट। अब देखिए वही मुहावरा है, वही कोट है, परंतु कोई किस दृष्टिकोण से उसे देखता है। तो वही रस इस भौतिक संसार का, वो कीड़ा देख रहा है कि वो मेरे लिए बनाया गया है, परंतु वो जो पौधा वो जानता है कि ये, और ऐसा नहीं कि वो पौधा मरने नहीं वाला है, वो किसी और रस से आस्वादित होता है और वो आकर्षित होता है, और वो किसी और रस के कारण बंधन में गिरता है। तो इसलिए भौतिक रस के आकर्षण स्थान आहार निद्रा भय मैथुन, चाहे किसी भी योनि में जीव चला जाए, ये जो चार कार्य हैं, इन चार कार्यों में जब तक उसे वो रस का आस्वादन नहीं मिल रहा तब तक वो कार्यशील रह ही नहीं सकता। अब हरेक योनि में आहार निद्रा भय मैथुन में जो रस मिलता है वो अलग अलग श्रेणी में होता है। अब जैसे जो जानवर होते हैं, अब एक बैल को आप लीजिए, एक बैल आहार में, ऐसा नहीं कि बैल को आहार में रस नहीं मिल रहा, खाता क्या है बैल? घास। अब वो घास को यदि मनुष्य को दिया जाए तो मनुष्य केवल वो घास खा खा कर वो मर जाएगा। रोज यदि केवल उस मनुष्य को, कल्पना कीजिए कि हम शुरू करें घास खाना रोज, वो बकरी बैल की तरह कचर कचर सब रोज सुबह सुबह शाम, तो हम, हमारा शरीर उस रस का आस्वादन करने के लिए नहीं बनाया गया केवल। अब जो बैल है, ऐसा नहीं कि उसमें मांगता थोड़ा नमक दो यार, इस घास में तो कोई नमक ही नहीं, कुछ कोई मसाला, कोई चाट मसाला डालो, कुछ तड़का तो मार के लाओ इसको, ऐसा नहीं किसान को बोलता है कि ऐसे ही घास रख दिया सामने। तो उसका शरीर उस रस का आहार निद्रा भय मैथुन उस शरीर के अनुसार उस रस के आस्वादन करने के लिए प्रकृति बनाती है। इसलिए आप देखो कि इन विभिन्न योनियों में जैसे ही जब कोई पैदा होता है, जैसे कोई बछड़ा या कोई ऊंट का बच्चा पैदा हुआ या जो भी, ये सब जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो इतना माता पिता ऐसा नहीं कि अब 2400 घंटे वो बच्चे की देखरेख करना है। तो अभी जैसे मनुष्य समाज में लीव मिलती है ना, क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी लीव, मैटरनिटी लीव, सॉरी मैटरनिटी लीव, ऐसा नहीं कि फिर अब वो गाय बैल मैटरनिटी लीव, अब हमारा 6-7 महीने देखभाल करना है। तुरंत वो बछड़ा कुछ मिनटों में उसे खड़ा होके अपने पैरों पर चलना शुरू करना पड़ता है। तो उनका शरीर इस प्रकार से प्रकृति बनाती है कि इस आहार निद्रा भय मैथुन में भी वो निम्नत स्तर, जैसे कि एक पेड़ को आप लो, एक पेड़ के अंदर क्या पेड़ अनुभव करेगा आहार निद्रा भय और मैथुन में? परंतु पेड़ अनुभव करता है। अपने श्रीमद् भागवत में वृक्षों का एक और नाम है पादप, पादप वृक्षों को कहा गया है, दशम स्कंद में वृक्षों को कहा गया है। भगवान कहते हैं पादप, पादप का अर्थ क्या है, पाद का अर्थ है पैर और प का अर्थ है पैर से जो खाता है। अब यहां पर कोई है जो पैर से खा सकता है? परंतु वृक्षों के अंदर उस आहार करने की शक्ति इस प्रकार से प्रकृति ने दी है कि वो पैरों से आहार लेते हैं। कैसे? जल उनके पैरों पर डाला जाता है, तो पाद पूजा, और पाद पूजा होती है उनकी और वहां से ही उनका आहार बनता है। तो अब मनुष्य समाज में होता क्या है कि आहार निद्रा भय मैथुन की जो श्रेणी है वो बहुत उच्चतर, सबसे ज्यादा उच्चतर श्रेणी का आहार, उच्चतर श्रेणी का भय मैथुन और ये सब कुछ निद्रा, तो इसमें मनुष्य फिर सोचने लगता है कि क्योंकि हम उच्चतर श्रेणी का आहार निद्रा कर रहे हैं इसलिए यही हमारा उद्देश्य है। परंतु वो उच्चतर श्रेणी का आहार निद्रा के लिए हमें उस उच्चतर योनि में नहीं डाला गया, दूसरा प्रयोजन है, बिल्कुल विपरीत प्रयोजन है, इन सब को रोकने का और इन सब से बाहर निकलने का प्रयोजन है। इसलिए फिर आध्यात्मिक रस का आस्वादन हम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। और आध्यात्मिक रस के आकर्षण स्थान, ये बच्चा अंदर रो रहा है बाहर रो रहा है, कहां है ये बच्चा, बाहर है क्या? शायद आहार कुछ चाहिए उसे, आध्यात्मिक आकर्षण नहीं हो रहा है। तो आध्यात्मिक रस का आस्वादन सबसे पहले यदि हम लें अर्च विग्रह, अब हम देखते हैं कि अर्च विग्रह के प्रति आकर्षण यह हमारी आत्मा का आकर्षण है और ये आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में हम सब देहात्म बुद्धि में इतने हैं, इसलिए कलयुग के लिए विशेष रूप से भगवान अर्च अवतार में आते हैं ताकि वो जो देहात्म बुद्धि हमारी है हम उसे भगवान में परिणित करें, भगवान की तरफ। इसलिए भगवान इतने सुंदर रूप लेकर आते हैं अर्च रूप में। जैसे ये घटना हुई इस्कॉन के एक सेंटर में, अफ्रीका में। तो वहां हुआ क्या कि मंदिर में आरती चल रही थी और उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा था, तो सभी भक्त बाहर पुस्तक वितरित करने के लिए गए हुए थे। तो वहां के लोकल कुछ अफ्रीकी गैंग वाले, माफिया टाइप के गुंडे, वो मंदिर में घुसे बंदूक लेकर। 8-10 ये अफ्रीकी गुंडे मंदिर में घुस गए और आरती पुजारी कर रहा था। तो अब भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार रूप गोस्वामी लिखते हैं कि यदि पुजारी अकेला है और कोई अतिथि आए, तो पुजारी को भगवान की अर्चना छोड़कर उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए। परंतु ये थोड़े विशेष अतिथि थे। हां, बिना तिथि के आए और बिना बताए आए, परंतु अब जो वो बता रहे थे बंदूक के द्वारा कि वो क्या अर्पित करने के लिए आए हैं, जैसे लोग कोई फल लेके आता है, कोई फूल लेके आता है मंदिर में, तो ये बंदूक लेके आए, तो सब फैल गए पूरे मंदिर में और सब बंदूक लेकर ऑल्टर की तरफ दिखा रहे हैं। तो उनका जो मेन लीडर ने पुजारी की तरफ इशारा किया, चिल्लाया कि क्या चल रहा है। तो वो जो पुजारी, वो भी अफ्रीका के ही, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे भगवान हैं और हम आरती कर रहे हैं, इनकी पूजा चल रही है, वर्शिप। तो ध्यान से, राधा कृष्ण के अर्च विग्रह थे, तो उसने ध्यान से देखा राधा कृष्ण के अर्च विग्रह को, और फिर वो पुजारी से पूछता है कि ये एक पुरुष है, एक स्त्री, ये भगवान है तुम्हारे? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर पूछता है कि इनकी शादी हुई है? तो इनके मुख से निकल गया हाँ, शादी हुई है। तो जैसे ही इस गैंग लीडर ने सुना कि इनकी शादी हुई है, उसने बाकियों को कहा सब हथियार नीचे डालो। तो सभी ने, क्यों हथियार नीचे क्यों, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। तो उसमें वो आकर्षण क्या जागृत हुआ अर्च विग्रह के प्रति, उसने देखा कि जो पति है वो काला है और पत्नी है सफेद। तो उस समय वो रेसिसम का प्रॉब्लम वहां पे चल रहा था, अपार्थाइड। तो उसने देखा कि यदि एक गोरी पत्नी और उसका विवाह काले पति के साथ हुआ है, ये लोग बहुत अच्छे, ये हमारे साथ है। तो सोचिए भगवान, जैसे श्रील प्रभुपाद जब अफ्रीका गए, तो प्रभुपाद वहां पर बहुत कुछ हुआ। प्रभुपाद जब अफ्रीका में थे, एक घटना, सबसे पहली घटना ये हुई कि वहां के जो अभी नए नए भक्त बने, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि वैष्णव एटिकेट या क्या होता है सदाचार, वैष्णव सदाचार। तो श्रील प्रभुपाद के सर्वेंट ने श्रील प्रभुपाद के कपड़े धोकर सुखाए थे, तो श्रील प्रभुपाद सुबह देखे कि कपड़े नहीं उनके, और ये श्रील प्रभुपाद के कपड़े बैठकर सामने बैठे हैं प्रभुपाद के कि हम आपको प्रसन्न करेंगे ये सैफरन पहनकर। तो श्रील प्रभुपाद, हालांकि उस समय तो मुस्कुराने हंसने लगे जो इन्होंने किया इस प्रकार, अपराध नहीं लिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद फिर अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का रूप श्याम वर्ण का है, यहां तक बोल दिया कि वो काले हैं। तो सभी एकदम खुश हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा नॉट लाइक यू, आप लोगों की तरह नहीं, वो श्याम सुंदर है, केवल केवल श्याम नहीं, वो सुंदर भी है। तो देखिए अर्च विग्रह के प्रति आकर्षण। कितने ऐसे उदाहरण हैं इस्कॉन में और हमारे शास्त्रों में कि अर्च विग्रह के प्रति आकर्षण जागृत हुआ और वहां से उनकी भक्ति प्रारंभ हुई। यदि हम एक और आकर्षण स्थान को लें, कीर्तन, जैसे कितने पाश्चात्य देश में और यहां पर भी उन्हें प्रवचन बिल्कुल समझ में नहीं आता, और कितने ऐसे ऐसे कार्यक्रम पाश्चात्य देश में इस्कॉन के चल रहे हैं जहां पर आके नास्तिक बैठते हैं, वो पूरे कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति सब नास्तिक है, वो आते, आप लोग जो बोलते हो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हमारा, परंतु ये जो कीर्तन आप करते हो ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो केवल कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ ऐसा कि भक्तों को पुलिस ने पकड़ा बाहर हरिनाम के नगर संकीर्तन के लिए, तो पुलिस ने पकड़ा और पुस्तक वितरण भी कर रहे थे, तो काफी सारे इल्जाम लगाए गए कि ये सब क्या हो रहा है, सब वहां के नियम के अनुसार ठीक नहीं, और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया। तो जब बंदी बना दिया जेल में, तो वो तो जेल में भी कीर्तन शुरू किया अपना, और जेल में उनका जो सब मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू कर दिया 4:30 बजे मंगल आरती से सब कुछ, और इतना जोर जोर से ये लोग कीर्तन किया करते थे कि वहां के जो गार्ड, उनको इतना अच्छा लगता था कि, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका तो बहुत बोरिंग जॉब होता है, केवल खड़ा रहो, कुछ वैरायटी नहीं उसमें कुछ, तो ये सारे कीर्तन करते थे, फिर क्लास होती ये सब, तो इसमें सिक्योरिटी गार्ड वहां के जो, उनको इतना आनंद हुआ कि वो भी धीरे धीरे वो कीर्तन में भाग लेने लगे, और धीरे धीरे वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में जितने सिक्योरिटी गार्ड सभी जप करना शुरू किए, कीर्तन शुरू हो गया, रोज रोज लंबा लंबा कीर्तन सेशन होता, क्योंकि इनके लिए कुछ करने के लिए और नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला कि तुम लोग यहां पर और खतरनाक हो ज्यादा, तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कीर्तन कर रहा है, तो उनको इस वजह से छोड़ दिया। जैसे कि रशिया में वहां पर उनका एक फेस्टिवल होता है जहां पर हजारों बाहर के हिप्पी टाइप के लोग आते हैं, तो वहां पर अपने इस्कॉन के कुछ दो सन्यासी जो अच्छे कीर्तनकार भक्तबृंग महाराज इत्यादि, ये लोग वहां पर कीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया, और शाम के समय कीर्तन प्रारंभ किया, और उनको रुकने नहीं दिया इन लोगों ने, इतना अच्छा लगा इनको कीर्तन कि वो शाम के कुछ 5-6 बजे उन्होंने शुरू किया, तो रात के 11 बजे तक वो कंटिन्यूस गा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब हम कल आएंगे फिर से, नहीं कल क्या, तो पूरी रात बाकी है, तो वो लोग पूरा घेराव कर जाने नहीं दिए, पूरे रात भर वो इनसे कीर्तन करवाए, और पूरे रात भर कीर्तन 5 से लेके पूरे रात भर सुबह तक, मतलब 12 घंटे से भी ज्यादा पूरा कीर्तन सब सुनने के पश्चात फिर वो लोग आकर पूछते इसका मतलब क्या है, या आप तो सोचिए इनको अर्थ भी नहीं पता क्या मतलब है, कुछ नहीं पता, परंतु कीर्तन में आकर्षण शक्ति देखी। इसलिए कई बार आप देखोगे कि कई बार भक्त जब ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां पर जब कीर्तन करते हैं, तो कई बार आप देखोगे आसपास के जितने सारे लोग वो उस धुन पर धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करते हैं, और फिर वो अपना बीट बजाना शुरू करते हैं उस धुन के ऊपर, और कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रेन से सब उतर गए अपने घर गए फिर भी वो चालू है, और उसके पश्चात, ऐसा नहीं कि केवल कुछ समय के लिए, उसके पश्चात जब भी वो किसी भक्त को देखते हैं तो दूर से, हाँ वो कीर्तन मुझे याद है, उस ट्रेन में मैंने सुना था, तो देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, चाहे टूटा फूटा जैसे भी कुछ भी बोले। जैसे हमारे जो ये गोविंदम आदि पुरुषम, ये गोविंदम आदि पुरुषम से इतने लोग आकर्षित हुए हैं इस्कॉन में, और राधा गोपीनाथ मंदिर में हमने इसका अनुभव किया, क्योंकि बहुत से उस समय ऑफिस जाने वाले वो भगवान का दर्शन श्रृंगार आरती के लिए आते, और कईयों को कुछ समझ में नहीं आता क्या गाया जा रहा है, वो गोविंदम आदि पुरुषम यमुना माता जी का जो। तो एक बार मैं खड़ा था तो एक व्यक्ति, वो रोज आया करता था तो मेरे बगल में, तो वो गाना शुरू किया, गोविंदम हरे कृष्णा परमात्मा शांति। तो मैं इधर उधर देख, मेरे को लगा रिकॉर्ड में आज कुछ गड़बड़ है क्या, ये अचानक भगवान से परमात्मा पे कैसे आ गए। तो ये रोज इस प्रकार से परमात्मा शांति, फिर उसको मैंने बताया कि ये गोविंदम आदि पुरुषम है, तमहम भजाम। उसने कहा जो भी है बहुत अच्छा है। तो कई लोग जब आप उनको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र तो हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे, उस प्रकार से। लेकिन फिर भी जो भी है, चाहे टूटा फूटा जैसे भी, यहां वहां हरे यहां कृष्ण वहां, जहां कहीं पर भी लगाएं वो आकर्षित रहते हैं कीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शास्त्र कई हैं जिन्हें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इतना आकर्षित किए हैं, हालांकि इनकी संख्या कम है, सबसे कम इनकी संख्या है जो शास्त्र को समझकर शास्त्र से आकर्षित हुए हैं, सिद्धांत से, फिलॉसफी से। हाँ, वो बहुत कम होता है कि इससे आकर्षित होते हैं। जैसे कि एक घटना, एक भारतीय व्यक्ति वो स्पेन गया, स्पेन जो कंट्री है वहां पर, तो वहां पर उसने अपना व्यापार शुरू करने की कोशिश की, परंतु वो भाषा नहीं जानता था, तो भाषा नहीं जानने के वजह से उसका व्यापार वहां पर चल नहीं रहा था, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो लेता उसमें वो ठीक से बता भी नहीं पाता, क्योंकि वो इनकी भाषा नहीं समझ पाते, ये उनकी भाषा नहीं समझ पाते। उसे अभी ये स्पैनिश भाषा सीखनी थी किसी ना किसी तरीके से, तो वो ढूंढ रहा था कि कैसे कम से कम टाइम में वो स्पैनिश भाषा सीखे, और उसने देखा कि हरे कृष्ण के एक भक्त ने बुक टेबल लगाया रखा था, तो ये आकर देखने लगे कि क्या पुस्तकें हैं यहां पर, ऐसे ही नजर पड़ी, क्योंकि बहुत सुंदर चित्र बीबीटी की जो पुस्तकें हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर चित्र, तो चित्र को देखकर देखा कि अरे ये तो कृष्ण से संबंधित कोई पुस्तकें हैं। तो जैसे ये व्यक्ति, अब देखिए ये जो हरे कृष्ण के बुक डिस्ट्रीब्यूटर, इनके अंदर से इनको प्रेरणा मिली, ऐसे ऐसी बात ये किसी को नहीं कहते थे। ये जैसे ही व्यक्ति आए तो ये भक्त ने कहा कि ये पुस्तक आप लीजिए, आप स्पैनिश भाषा सीख सकेंगे, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो भाषा। तो इसे लगा कि मैं इतनी आतुरता से उस सीखने की कोशिश कर रहा हूं, इसे कैसे पता। तो स्पैनिश भाषा सीखने के लिए उसने पुस्तक खरीदी, जो क्या होना था, फिर भक्त बन गए हो, और फिर वो बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी वहां पर, और हालांकि व्यापार वगैरह तो इतना कुछ उनका नहीं चल पाया, लेकिन असली व्यापार में आ गए शास्त्र के। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें कई आकर मैंने स्वयं अनुभव किया है कि कई ऐसे आए हैं बुक स्टॉल पर, और एक एक कर सारी पुस्तकें इतनी थप्पी हाथ में लेकर उन्होंने कहा और भी कुछ है पीछे आपके वहां पे नीचे ट्रंक में या कहां, ऐसे पूरा सेट लेकर गए। और ऐसा नहीं कि वो लेकर गए हैं तो कहीं बेचने के लिए, कई लोग ले जाते हैं बेचने के लिए, नहीं, इनमें से बहुत से उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी और इतनी अच्छी लगी वो एक पुस्तक, इतने आकर्षित हो गए उस एक पुस्तक को पढ़ने के बाद कि उनको श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं ये वास्तविकता परम सत्य, ये नेकेड ट्रुथ बोलते हैं जिसे, ये हमें यहां पर देखने को पढ़ने को मिलता है। इसलिए कई लोग तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से डरते हैं ज्यादा, कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा जान लेंगे, ज्यादा जान लेंगे तो फिर सारा इंद्रिय भोग का जो मजा है किरकिरा हो जाएगा। इसलिए केवल कीर्तन में आओ इनके, महाप्रसादे गोविंदे। अच्छा, अब यदि इनकी महाप्रसाद की चर्चा शुरू करें तब तो फिर शायद आप लोगों को महाप्रसाद मिलेगा नहीं आज। इतने सारी घटनाएं हैं कि जहां पर ये आध्यात्मिक आकर्षण स्थान जिस रस में लोगों ने आस्वादन किया है। ये हाल ही में एक किस्सा हुआ भारत में, बैंगलोर के एक जेल में, आप लोग जानते होंगे शायद, उसका नाम है अग्रह जेल। उस जेल में कैदी बाहर निकलने से मना कर रहे हैं क्योंकि उस जेल में इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ की खिचड़ी जाती है। तो जेल के कैदी इतना ज्यादा आकर्षित हो गए, वो क्योंकि वहां पर हैं इसलिए मिल रहा है उनको रोज, तो उनका टर्म पूरा हो गया, अब उनको निकलने का समय है और वो वहां पर वो हाउसफुल है पूरा, बाकी कैदी को अंदर रखने के लिए जगह नहीं, ये बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। तो कई तो उसमें वो जानबूझ के किसी को थप्पड़ मारना, ये फिर से जेल में अंदर, और वो अथॉरिटी जान रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं लोग, परंतु फिर इनको जबरदस्ती निकाल भी नहीं पा रहे। ये महाप्रसाद की शक्ति। तो यहां पर यदि हम इस आध्यात्मिक रस के सारे स्थान को देखें तो भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं इस श्लोक में, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम साधकों के लिए, जिसमें जब हम ये समझ लेंगे कि ये जो आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन हम सबको करना है, परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब देखिए, बड़े बड़े भगवान के जो भक्त हुए हैं उन्होंने इस भौतिक संसार का परित्याग किस प्रकार से किया। जैसे कि हम सुनते हैं भरत महाराज, श्रीमद् भागवत में भरत महाराज का उदाहरण है, जो कि राजा, ये पूरा भारतवर्ष उनके नाम से, पूरे पृथ्वी के वो राजा, और उन्होंने अपने राज्य का परित्याग किया जैसे कोई व्यक्ति मल का परित्याग करता है, उस प्रकार वो उदाहरण दिया। तो केवल ऐसा नहीं कि वो ऊब गए थे या त्रस्त हो गए थे, ऐसा नहीं था, इतना ज्यादा आकर्षण भगवान के प्रति कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके, सब कुछ छोड़ देना, इतना बड़ा राज्य छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब छोड़े तो जैसे कोई वीआरएस लेता है तो सब मिलता है ना, ग्रेच्युटी सुपर एनिवेशन ये सब मिलता है ना। तो रूप गोस्वामी वो किस पद पर थे, ये हम कलयुग की बात कर रहे हैं 500 वर्ष पहले। रूप गोस्वामी जब छोड़े तो एक नाव भरकर स्वर्ण मुद्राएं, सोचिए यहां पर बहुत से रिटायर्ड होंगे, किसी को मिला नाव भरकर बोट फुल गोल्ड कॉइन्स, और वो फिर उन्होंने बांट दिया। ऐसा नहीं कि फिर उसमें से कुछ नया धंधा चालू किया कि इतना सब कुछ मिला है, नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाया करते थे वो उस समय, सोचिए कि 500 वर्ष पहले वो कुछ कैलकुलेशन निकाला हुआ है कि उनके साल की आमदनी 500 वर्ष पहले 12 लाख, इतने धनवान रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो सब छोड़ छाड़ कर जगन्नाथपुरी में वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। जो जगन्नाथ का महाप्रसाद बचा हुआ दूसरे दिन गायों को दिया जाता था, वो गाय भी खाकर जो थूक देती थी उसे लेकर खाते थे, और वो भी बंद कर दिया था उन्होंने कुछ समय बाद, केवल कुछ छास, वो भी द्रोण भर के, वो भी दो दिन बाद, हर दूसरे तीसरे दिन बाद थोड़ी सी छास पीते थे, और उसमें भी उनको लगता था कि इंद्रिय भोग हो रहा है। तो कौन सी शक्ति इनके अंदर थी कि ये इस प्रकार के स्तर पर आ सके, ये परम दृष्टवा, ये ऐसा आस्वादन रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में बताया गया है कि एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी, पेट खराब हुआ उनका, तो उनका पेट खराब हुआ तो वो रोज प्रवचन दिया करते थे, घंटों कृष्ण लीला पर प्रवचन दिया करते थे, परंतु अब पेट खराब हुआ तो वो प्रवचन नहीं दे पा रहे थे, बीमार, तो सभी भक्त जानने के लिए वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने जब रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा तो वैद्य ने कहा कि इनका पेट खराब हुआ है क्योंकि इन्होंने दूध के बने हुए बहुत हेवी पकवान खाए हैं, तो सभी वैद्य को मारने वाले थे, लेकिन इनके विषय में बोल रहे हो, इनको तो हम सब जानते हैं, तो केवल छास, वो भी इतना सा, इतने से द्रोण में, वो भी दो दिन तीन दिन बाद पीते हैं, और तुम कह रहे हो कि दूध के बड़े बने हुए मिठाइयां खाई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा हाँ ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पिछले ही दिन वो भगवान श्री कृष्ण के लीला स्मरण में थे, और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्मरण में श्रीमती राधा रानी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने हाथों से बनाकर स्वीट राइस लाकर ऑफर किया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सोचिए, राधा रानी लाकर ऑफर करती, तो उन्होंने वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसे खा लिया कृष्ण लीला स्मरण में, और उसके वजह से फिर वो बीमार हुए, इंडाइजेशन हो गया। तो स्थिति देखिए अब इन भक्तों की, कि ये सब परम दृष्टवा इस प्रकार से आकर्षित थे भगवान श्री कृष्ण से, कि ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब जो रस है इस भौतिक संसार का जो बांधने वाला है, इन सब के प्रति तनिक भी कोई आकर्षण नहीं, बल्कि जो यहां पर भगवान कहते हैं कि जब इतना बढ़ जाता है किसी का आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कि ये सब भौतिक संसार का रस, रस नहीं, वो केवल निरस, पूरा भौतिक संसार निरस लगता है। आज का श्लोक, क्योंकि उसमें अर्जुन ने भगवान को कृष्ण ये शब्द से पुकारा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था हमें समझना कि उन कृष्ण के प्रति हम कितना आकर्षित हो रहे हैं, जो कि सर्व आकर्षति हैं। तो हमारा लोहा कितना निकट जा रहा है चुंबक के तरफ, या कितना जंग लगा हुआ है, ये सब जानने के लिए हमने उसकी चर्चा थोड़ी विस्तार में की। तो अब इस अगले श्लोक में अर्जुन, पिछले श्लोक में भी अर्जुन ने अपने शरीर के कुछ लक्षण बताए थे, मुखम च परिशुष्यति रोम हर्षश्च जायते, यहां पर जैसे अब और बता रहे हैं, वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम श्रम सते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। यहां पर इस श्लोक में केवल अर्जुन के शारीरिक लक्षणों के बारे में बताया है कि अब अपने गुरुजन, पितामह, इनको सामने देखकर, इनको समक्ष अपने देखकर अर्जुन के शरीर में किन किन प्रकार के शोक के लक्षण दिख रहे हैं। ये सारे शोक के लक्षण हैं, छह शोक के लक्षण इन दोनों श्लोकों में, पिछले श्लोक में से दो लक्षण और ये जो श्लोक आज हम लिए हैं इस श्लोक से चार लक्षण। तो कुल मिलाकर छह शोक के लक्षण हैं जो अर्जुन में दिख रहे हैं, भगवान स्वयं अपने आंखों से देख रहे हैं। सबसे पहले अंगों में शिथिलता, दूसरा लक्षण मुख का सूखना, तीसरा लक्षण सारे शरीर में कंपन। ये अनुभव होते हैं कभी कभी, भौतिक स्तर पर होते होंगे ये सब, ये आध्यात्मिक स्तर पर भी ये लक्षण पाए जाते हैं, परंतु यहां पर अर्जुन अब विषाद में गए हुए हैं इसलिए सारे लक्षण दिख रहे हैं। चौथा लक्षण शरीर रोमांचित होना, पांचवा लक्षण त्वचा में जलन, और अंततः ये सब लक्षणों के बाद जो हाथ में गांडीव पकड़ा हुआ अर्जुन, वो गांडीव अब खिसक रहा था। श्रम सते हस्तात, गांडीवम श्रम सते हस्तात, वो फिसल रहा था, सरक रहा था। तो ये छह लक्षण अर्जुन के शोक के, यदि हम सबसे पहला लक्षण ले अंगों में शिथिलता, किसी को अनुभव हुआ है अंगों की शिथिलता क्या होती है? भूख प्यास के कारण जब सामान्य कमजोरी शरीर में देखी जाती है तो उसे कहते हैं शिथिलता, और विशेष रूप से इसमें हाथ और पैर वो शिथिल हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है उसमें। ये शायद हम लोग ने अनुभव किया होगा निर्जल एकादशी, निर्जल एकादशी में कई बार इस प्रकार के अनुभव आते हैं कि अंगों में कमजोरी आने के वजह से कुछ पिए नहीं, कुछ खाए नहीं, उसके वजह से फिर हाथ पैर थोड़े कांपने लगते हैं। अर्जुन के यहां पर हाथ पैर कांप रहे थे, शिथिल हो रहे थे ज्यादा। कई बार हमें लगता है निर्जल एकादशी में शायद हम इतने प्रगति कर लिए भक्ति में कि भगवान के दिव्य भाव में हाथ पैर, एक बार भक्त आके पूछते प्रभु जी शायद मेरे को एक्स्टैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं आज, फिर बाद में पता लगता है कुछ खाया नहीं उसके वजह से ये अंग शिथिल हो रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला लक्षण अर्जुन का दिख रहा है वो सामान्य कमजोरी। अब ये नहीं कि अर्जुन अपना नाश्ता वगैरह नहीं कर आए थे, ऐसा नहीं कि उस स्तर पर अर्जुन के अंग शिथिल हो रहे थे, परंतु धीरे धीरे ये लक्षणों में और वृद्धि होगी। इसलिए सबसे पहला लक्षण यहां पर बताया जा रहा है कि केवल सामान्य कमजोरी अब दिख रही है, कि अर्जुन जैसे सोच रहे हैं वैसे ये सारे लक्षण धीरे धीरे अपनी और गहराई को पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सामान्य कमजोरी जो कि भूख प्यास के कारण दिखती है, परंतु अर्जुन का वो कारण नहीं था, एक ही कारण अर्जुन का, क्या कारण? सामने मेरे सगे संबंधी, इनको मारना है मुझे, परंतु ये सबसे पहला लक्षण। इसके पश्चात मुख का सूखना, इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है परिशुष्यति। परिशुष्यति का अर्थ है, शुष्यति का अर्थ है सूखना, और परि का अर्थ है चारों ओर से। तो अर्जुन का मुख चारों ओर से सूख रहा था, इसका अर्थ क्या है? कि अंदर से भी जो अर्जुन का कंठ और तालु, वो अंदर से अर्जुन पूरा सूखापन महसूस कर रहे थे और अर्जुन के होंठ बाहर से वो भी सूख गए थे। तो सोचिए अर्जुन कैसे कितनी गहराई में जा रहे हैं विषाद के, कि इस प्रकार के बाहरी लक्षण ये सब कुछ होना। अब ये जब मुख जो सूखता है, परिशुष्यति ये जो शब्द है संस्कृत का, ये तभी देखा जाता है जब अंदर से बहुत अग्नि होती है किसी के अंदर। तो अर्जुन के अंदर जो शोक की अग्नि इतनी प्रज्वलित थी कि उसके वजह से ये सब कुछ बाहर से सूख रहा था। तो ये समझ लेना चाहिए कि शोक की अग्नि कितनी तीव्र अर्जुन के अंदर। अब सारे शरीर में कंपन, ये जो सारे शरीर का जो कंपन, ये जो लक्षण है ये पहले लक्षण के समान नहीं है। शिथिलता, शिथिलता में भी कंपन होता है, परंतु इसमें सारा शरीर कंपित होता है, उसमें केवल कुछ अंग, अंगों में शिथिलता आती है, परंतु इसमें सारा शरीर कंपित होना शुरू होता है। और ये अत्यंत भय के कारण, जैसे श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का वार्तालाप, उसे कहा है प्रणय कलह। हुआ क्या कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और रुक्मिणी देवी वो पंखा डुला रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी देवी का चरित्र बताया गया है कि वो बहुत शांत स्वभाव की, सत्यभामा बिल्कुल विपरीत। सत्यभामा एकदम हटी हटीली और गुस्से, तुरंत गुस्सा आ जाता है, पारिजात वृक्ष अभी चाहिए मुझे, अभी ला कर दो। तो इस प्रकार से सत्यभामा का स्वभाव बताया गया, बहुत गुस्सा आ जाना और हट करना ये सब कुछ। परंतु रुक्मिणी देवी एकदम शांत। तो भगवान श्री कृष्ण अब रुक्मिणी के साथ कुछ हंसी मजाक करना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं कि हे वैदर्भी, तुम्हें लगता नहीं कभी कि तुमने बहुत बड़ी गलती की मुझसे शादी कर? तो रुक्मिणी अब वो चामर हिला रही और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे हैं कि देखो कितने बड़े बड़े दिग्गज तुमसे शादी करना चाहते थे, शिशुपाल, अरे वो तो चेदी राज, इतना बड़ा राजा शिशुपाल तुमसे शादी करना चाहता था, और तुम खुद एक बहुत बड़े भीष्म की पुत्री, इतने बड़े राजा की तुम पुत्री, और तुमने मुझसे शादी की, मैं ग्वाला, क्या इंटरकास्ट मैरिज किया तुमने? कम से कम देख भाल कर लिया होता वो चिट्ठी डालने से पहले कि तुम किससे शादी करने के लिए इतना प्रेरित हो रहे, मेरा बायोडाटा मंगाया होता पहले, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, किसी को पता नहीं कि कौन है मेरे असली माता पिता, मेरे खानदान का कोई ठिकाना नहीं, मेरे कुल का कोई ठिकाना नहीं, मेरी जात का कोई ठिकाना नहीं, कोई मेरी जात पात नहीं, कुछ नहीं। सही बोल रहे थे भगवान, भगवान की कोई जात पात थोड़ी होती है। तो रुक्मिणी देवी अब धीरे धीरे ये सारे लक्षण रुक्मिणी देवी के अंदर आने लगे। तो भगवान ये चाहते थे कि ये इस प्रकार का जो वार्तालाप प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पति पत्नी में इस प्रकार का प्रणय कलह होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में इसी में आनंद है प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं तो क्या आनंद, केवल ऑफिस से गए आए खाए सोए बस। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार का ये आनंद ये होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से रुक्मिणी देवी के साथ अब परिहास कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि बहुत बड़ी गलती की तुमने, इसलिए मैं अभी भी तुमको कहता हूं, अभी भी समय है, डाइवोर्स ले लो। और अभी भी ये सारे आतुर होंगे तुमसे शादी करने के लिए, और भी कितने देखो तुम कितनी सुंदर हो, मेरे क्या, मैं तो काला कलूटा, कोई सुंदरता नहीं मेरे पास, कोई शस्त्र वस्त्र चलाना आता नहीं मुझे, केवल बांसुरी बजाना आता है और कुछ नहीं आता। तो जैसे रुक्मिणी देवी, और भगवान एकदम गंभीरता से बोल रहे हैं रुक्मिणी देवी को, और भगवान थोड़े और खड़े हो गए और बोले कि ठीक है, अब हम मैं पूरी तैयारी कर लूंगा कि तुम्हारी तुम्हारा विवाह योग्य पति से हो, जो तुम्हारे योग्य हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो भगवान इतने गंभीरता से बोले, वहां रुक्मिणी नीचे धड़ाम गिर गई, शरीर में कंपन हुआ, और वो कंपन भय के कारण, क्या भय, विह्वल हो गई। भय क्या, कि ये तो छोड़ने की बात बोल रहे हैं। बस इस ख्याल को सोचते हुए, इस विचार को सोचते हुए रुक्मिणी वहां पर गिर गए। परंतु रुक्मिणी देवी और अर्जुन में अंतर यही, क्योंकि रुक्मिणी देवी एक स्त्री और अबला, इतनी शक्ति एक क्षत्रिय के समान, अर्जुन के समान इतनी शारीरिक शक्ति नहीं थी, इसलिए रुक्मिणी देवी सीधा जैसे एक दंडा गिरता है, वैसे रुक्मिणी देवी नीचे गिर गई। अब भगवान श्री कृष्ण यहां तक ये नहीं सोचे थे कि ऐसे गिर जाएंगी, तो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण फिर अपना चतुर्भुज रूप लिए और अपने दो हाथों से रुक्मिणी देवी को उठाए, और अपने दो अन्य हाथों से रुक्मिणी देवी को फिर से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण दिया गया, विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक कपूर, कपूर को जब ग्राइंडिंग स्टोन में, वो क्या कहते हैं उसे, खलबत्ते में, खलबत्ता बोलते, उसके अंदर जब पीसा जाता है तो उसकी खुशबू और फैलती है, वैसे रुक्मिणी देवी उस कपूर के समान, और भगवान के जो शब्द थे वो उस खलबत्ते के समान जो पीस रहे थे और रुक्मिणी के गुणों को और फैला रहे थे। तो रुक्मिणी देवी के अंदर यही लक्षण पाए गए, परंतु रुक्मिणी देवी एक क्षत्रिय नहीं थी, एक एक पुरुष जो क्षत्रिय पुरुष होता है उस प्रकार से नहीं थी, इसलिए रुक्मिणी देवी वहां पर ही नीचे गिर गई उस भय के कारण, उस कंपन के कारण। अब शरीर रोमांचित होना, ये अनुभव किया होगा कई बार आप लोगों ने, ये जो रोम छिद्र हैं ये एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। एग्जाम का रिजल्ट या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शादी का एंगेजमेंट, या जो भी अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं जिसमें ये रोमांच। परंतु यहां पर बताया गया है कि आध्यात्मिक रोमांच होता है और भौतिक रोमांच। आध्यात्मिक रोमांच आध्यात्मिक परमानंद के कारण होता है, और भौतिक रोमांच होता है अत्यधिक भय के कारण। तो यहां पर अर्जुन के अंदर रोम हर्षश्च जायते, अर्जुन के अंदर ये रोमांच देखा गया अत्यधिक भय के कारण। और भय क्या, कि मेरे सामने मेरे गुरुजन, मेरे पितामह खड़े हैं, इनको मारूंगा और इनके खून से सना हुआ सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो अर्जुन इस भय को सहन नहीं कर पाए, तो अत्यधिक भय के कारण अर्जुन के अंदर, अर्जुन का सारा रोमांच होने, और आध्यात्मिक रोमांच जैसे हम मंगल आरती में गाते हैं, रोमांच कंप श्रुतरंग भाजो, कि आध्यात्मिक रोमांच होता है जब हम भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में इतने ओतप्रोत रहते हैं कि उसके कारण भगवान की कृपा के वजह से। पांचवा, त्वचा में जलन, त्वचैव परिदह्यते, ज्वर जिसे कहते हैं, तापमान बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना। तो यदि कोई थर्मामीटर लगाता तो अर्जुन का टेम्परेचर बढ़ गया था। अब ज्वर भी दो होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक ज्वर। जब व्यक्ति मरता है तब भी उसका ज्वर बढ़ जाता है, फीवर जिसे कहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्वर होता है जैसे कि गोपियां और सखियां वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में उनके अंदर ज्वर पाया गया। श्रीमती राधा रानी के विषय में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी एक दिन इतने वियोग में थी भगवान श्री कृष्ण के कि श्रीमती राधा रानी का सारा शरीर जल रहा था। श्रीमती राधा रानी के शरीर पर जो पुष्प थे वो ऐसे पूरे, जैसे पुष्पों को आग में डाल दो वैसे वो जल कर काले हो गए सारे पुष्प। तो सभी सखियां वो आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक श्रीमती राधा रानी के शरीर से इतनी गर्मी, इतना ज्वर निकल रहा। तो जो चंदन, उन्होंने चंदन लगाया शीतल करने के लिए, तो वो चंदन वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ गया, इतना ज्वर था श्रीमती राधा रानी के शरीर से। रूप गोस्वामी इसी लीला को कुछ भक्तों को सुना रहे थे, श्रीमती राधा रानी के वियोग की लीला। तो जो भक्त सुन रहे थे उनमें ये आध्यात्मिक ज्वर आ गया वृंदावन में। वो तो जो भक्त सुन रहे थे उनका तापमान बढ़ गया अचानक। तो उनमें से एक भक्त, उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी सुना रहे हैं तो इनका तापमान नहीं बढ़ रहा, हमारा इतना बढ़ गया, सब शरीर का इतना ऐसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ समझ में आ रहा था उन्हें। तो उनमें से एक भक्त वो देखने के लिए कि ये इतने आसानी से कृष्ण लीला सुना रहे हैं, इनका ज्वर नहीं बढ़ा, तो रूप गोस्वामी को स्पर्श करने गए जब रूप गोस्वामी सुना रहे थे। तो जैसे उन्होंने रूप गोस्वामी को स्पर्श किया, चटका लगा उनको, ये बताया गया है कि उसकी उंगली जल गई, उस भक्त की उंगली। हमें लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, क्या ज्वर, चटका लगना, ऐसा होता है क्या कुछ? ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है, शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है ये। तो शरीर का तापमान बढ़ गया, अर्जुन के शरीर का तापमान इस प्रकार से बढ़ गया। अंतिम हाथ से गांडीव का खिसकना, अर्थात स्तंभित हो जाना या शरीर अकड़ जाना। जैसे रुक्मिणी देवी, जब रुक्मिणी देवी को भगवान ये सब कुछ बोल रहे थे तो रुक्मिणी देवी भी स्तंभित हो गई और उनका भी शरीर अकड़ गया और उनके हाथ में जो चामर था वो चामर गिर गया। तो जब शरीर स्तंभित और अकड़ जाता है तो हाथ में जो कुछ होता है वो गिर जाता है और फिर व्यक्ति भी गिर जाता है। तो यहां पर एक और घटना भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कि भगवान श्री कृष्ण एक समय श्रीमती राधा रानी से मिलने गए और श्रीमती राधा रानी की सुंदरता देखकर भगवान श्री कृष्ण स्तंभित हो गए। स्तंभित होने का अर्थ क्या है? स्तंभ की तरह खड़े हो जाना, जैसे स्तंभ निर्जीव हो जाता है, जैसे वैसे भगवान स्तंभ की तरह खड़े रह गए राधा रानी की सुंदरता देखते। और उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ की जो वंशी वो गिर गई, अकड़ गया पूरा शरीर, तो वो पूरी बांसुरी गिर गई नीचे। और तभी श्रीमती राधा रानी ने वो बांसुरी उठाई और चुरा के चले गए और भगवान श्री कृष्ण को पता भी नहीं लगा, वो केवल भौचक्का स्तंभित अकड़े हुए खड़े श्रीमती राधा रानी वो चुरा कर ले गई बांसुरी। और उसके बाद में बहुत कुछ लीला हुई कि भगवान श्री कृष्ण वो बांसुरी को कैसे ले पाए। परंतु यहां पर श्रीमती राधा रानी की सुंदरता को देखकर स्तंभित हो जाना, वो भी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो यहां पर अर्जुन अब स्तंभित हो रहे हैं। परंतु यहां पर बताया क्या गया है? गांडीवम श्रम सते हस्तात्। गांडीव जो अर्जुन का धनुष, वो खिसकने लगा। अर्जुन को ये गांडीव धनुष विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाकर दिया ये ऐसा धनुष कि भगवान श्री कृष्ण का जो शारंग धनुष है उसके स्तर का यह धनुष था गांडीव। इसलिए अर्जुन कभी अपने इस गांडीव को छोड़ते नहीं थे। इसलिए अर्जुन का एक और नाम था गांडीवी। इस गांडीव धनुष के वजह से अर्जुन को एक और नाम मिला था गांडीवी। अर्जुन ने एक बार व्रत लिया था कि जो भी व्यक्ति इस गांडीव का अपमान करेगा उसका सर मैं तलवार से काट दूंगा। यह अर्जुन ने व्रत लिया था। तो हुआ क्या कि महाभारत के युद्ध के समय कर्ण जब 8-9 दिन के पश्चात जब वो युद्ध भूमि में आए तो कर्ण का युद्ध युधिष्ठिर महाराज से हो रहा था और अर्जुन को पता नहीं था कि कर्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि कर्ण की क्या शक्ति है, तो युधिष्ठिर महाराज नहीं संभाल पाएंगे कर्ण के बाणों को। तो युधिष्ठिर महाराज पूरा घायल हो गए कर्ण के बाणों की वजह से और युधिष्ठिर महाराज को फिर चिकित्सा के लिए तुरंत शिविर में ले जाया गया। तो अर्जुन को जैसे ही पता लगा कि युधिष्ठिर महाराज पर बाणों की बहुचार कर्ण ने की तो तुरंत अर्जुन गए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए कि सब ठीक तो है। तो युधिष्ठिर महाराज जैसे कर्ण को देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, अर्जुन को देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, कर्ण की हत्या की कि नहीं? तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, मैं तो आपको देखने आया केवल। तो युधिष्ठिर महाराज वो थोड़ा क्रोधित हुए, बोले तुम युद्ध भूमि छोड़कर आए मुझे देखने के लिए? वहां भीम अकेला लड़ रहा है कर्ण के साथ, तो मैंने संदेशा भेजा था कि तुम जाकर कर्ण के साथ युद्ध करो और कर्ण का वध करो और तुम ये सब कुछ छोड़कर मुझे देखने आए, क्या फायदा तुम्हारे गांडीव का? युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, क्या फायदा तुम्हारे गांडीव का, फेंक दो उसे, दे दो किसी को भंगार में। ऐसा नहीं बोला होगा, दे दो किसी को, फेंको उसे। अब अर्जुन, हालांकि युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई, लेकिन अर्जुन ने जो व्रत लिया था, जो प्रण लिया था, तो अर्जुन को अपना प्रण याद आ गया। भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन को लाया भगवान श्री कृष्ण ही ड्राइवर, तो भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा प्रण लेके रखा है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, किस लिए? युधिष्ठिर महाराज का अब सर धड़ से अलग करने के लिए। पूरी तलवार निकाल ली, अब मारने जाने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम ये? तो अर्जुन ने कहा, मैंने तो ये प्रण लिया। अब सोचिए उस जमाने के प्रण भी देखिए जो लेते थे, तो चाहे भाई हो चाहे वो भी युधिष्ठिर जैसा भाई, मैंने ये प्रण लिया है तो ये पूरा तो करना है मुझे, क्योंकि गांडीव के बारे में कहा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो युधिष्ठिर महाराज की हत्या करनी है ना, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे सम्मानित व्यक्ति की हत्या एक दूसरे तरीके से हो सकती है। उनका शरीर बचा रहेगा परंतु वो हत्या से भी ज्यादा दुष्कर है, दुर्वचन बोलो, अपशब्द बोलो युधिष्ठिर महाराज को, गाली दो, तो एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान करने से वो व्यक्ति को जो अनुभव होता है वो हत्या के की पीड़ा से भी ज्यादा बदतर अनुभव। तब अर्जुन गाली देना शुरू किए युधिष्ठिर महाराज को। अब ये हम नहीं बताएंगे कौन सी गालियां दी होगी, गालियां देना शुरू किए। अरे क्या फायदा धर्मराज होने का, अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया, इस प्रकार से वो बोलने लगे युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज अचानक, ये अर्जुन को क्या हुआ, पहले तलवार निकाल रहा है और अब ये इस प्रकार की बातें बोल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा था कि गाली देने के बाद फिर क्षमा तुरंत मांग लेना। तो अर्जुन गाली दिए, गाली उनकी चल रही तब तक युधिष्ठिर महाराज निकल पड़े कि अब क्या, जीने से क्या फायदा है, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं यही अर्जुन मुझे गाली दे रहा है। तो अब भगवान को युधिष्ठिर महाराज को संभालना, तो भगवान अब अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर महाराज को पकड़े, उनको संभाले, उनको बोले कि नहीं देखो ये अर्जुन ने ये प्रण लिया था और उस प्रण को पूरा करने के लिए वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, वो केवल उस प्रण को पूरा करने के लिए बोल रहा है ये सब अपशब्द। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बताया फिर कान में कि ये सब प्रण था, सब नाटक चल रहा है अर्जुन का और मैं ही बोला हूं, मैंने स्क्रिप्ट दिया है, डायलॉग मेरा ही है सब। तो युधिष्ठिर महाराज को बोला। अब यहां पर अर्जुन ने क्षमा वगैरह सब मांग ली युधिष्ठिर महाराज से, तो सब कुछ हो गया और अर्जुन फिर भगवान से कहे कि अब मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने। तो भगवान ने बोला अब क्या हो गया तुम्हें? अर्जुन ने कहा कि मैंने ऐसे अपशब्द मेरे भाई, बड़े भाई के, अग्रज के प्रति कहे तो मैं कैसे जी सकता हूं, तो मैं निकला आत्महत्या कर। तो अब भगवान एक और समस्या अर्जुन को संभालने के लिए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो आत्महत्या से भी ज्यादा बदतर मैं बताता हूं क्या करना तुम स्वयं के लिए। देखिए भगवान के पास सारे उपाय हैं, सारे समस्याओं के उपाय। तो भगवान ने कहा कि आत्महत्या से भी ज्यादा बदतर है स्वयं की प्रशंसा करना। तो अब अर्जुन तुम स्वयं की प्रशंसा शुरू कर दो, वो आत्महत्या से भी ज्यादा बदतर। तो अर्जुन फिर शुरू कर दिए, मैं देखो अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं इस पूरी पृथ्वी में, मुझ जैसा यशस्वी धनुर्धर कोई नहीं। अर्जुन शुरू किए और भगवान बोले हां और बोलो और बोलो। तो इस कथा से यह पता लगता है कि जब किसी सम्मानित व्यक्ति को दुर्वचन कहा जाता है तो उसे मारने से ज्यादा है वो, और स्वयं की प्रशंसा जब कोई व्यक्ति करता है तो आत्महत्या से ज्यादा बदतर। यह भगवान ने अर्जुन के द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा हमें सिखाया। तो जब हम अपनी ही प्रशंसा, अपना ढोल लेकर पीटना शुरू करते हैं तो क्या समझना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं ये महाभारत में, वो आत्महत्या है, उससे भी ज्यादा बदतर है। तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों को संभाला। अब चलो वहां पर कर्ण प्रतीक्षा में है, थोड़ा अपना संग कर्ण को दो। परंतु यहां पर ये हम समझ सकते हैं कि जो गांडीव, ये कथा इसलिए सुनाई गई कि ये गांडीव जिसके वजह से अर्जुन को नाम मिला गांडीवी, ये अर्जुन जिसने प्रण लिया था कि गांडीव का कोई अपमान करेगा तो, यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज ने अपमान किया तो सर धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल ली अर्जुन ने, वही अर्जुन अब दुविधा में, अर्जुन के मन की दुविधा। यहां पर देखिए बहुत ही विशेष शब्द इस्तेमाल किया है, श्रम सते हस्तात। ये जो गांडीव गिरा नहीं, अर्जुन ने गांडीव छोड़ा नहीं अब तक, गांडीव खिसक रहा था। तो इसमें अर्जुन के मन की दुविधा बताई गई है, कैसे कोई समझ पाएगा कि गांडीव गिरा नहीं केवल खिसक रहा है? बहुत गहरा मुद्दा है इसके अंदर। यह है कि अर्जुन इस दुविधा में है कि युद्ध करूं या न करूं। यदि अर्जुन उस दुविधा में नहीं होते तो या तो गांडीव को पूरा पकड़ते या पूरा छोड़ते। तो गांडीव न तो पूरा छोड़ा गया उनसे न पूरा पकड़ा गया, इसलिए खिसक रहा था। तो वो जो गांडीव खिसक रहा है वो क्या संकेत दे रहा है कि अर्जुन इस दुविधा में है। कौन सी दुविधा में? कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहे थे गांडीव को, और ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे। तो यहां पर ये सारे जो लक्षण बताए गए, अब इन लक्षणों के द्वारा ये अध्याय की नींव डाली गई है कि इतने गहरे तीव्र लक्षण में अर्जुन इस विषाद में रोमांचित, कंपित, शिथिल, उनके सारे अंग, मुख सूख रहा है, और यहां पर गांडीव सरक रहा है। इस अवस्था में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अब एक एक कारण बताएंगे कि क्यों ये युद्ध मुझे नहीं लड़ना चाहिए, बाकी आप लोग सब करते रहो जो कर्म है, मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो यहां पर इसलिए इसने विस्तार से इन लक्षणों का वर्णन विवरण दिया गया है, ताकि हम समझ सकें कि अर्जुन कोई साधारण विषाद में नहीं गए। ऐसे शारीरिक लक्षण जब किसी में पाए जा रहे हैं, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा भयभीत होता है और भय के कारण उसके होंठ सूखने लगते हैं, कंठ सूखने लगता है और कंपित होता है शरीर, तो समझ में आता है कि कितना भय उसके अंदर है। तो इसलिए ये बताया गया है कि हम समझ लें कि अर्जुन कैसे विषाद में गए, इसलिए उनके प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए कि जो अर्जुन की स्थिति है वैसी स्थिति में अर्जुन ने भगवद गीता को सुना। तो हम कोई बहाना नहीं दे सकते कि अरे अभी मैं भयभीत हूं, अभी मैं गीता नहीं सुनूंगा, अभी मैं मुख सूख रहा है, पानी लाओ पहले। इन सब लक्षणों के साथ साथ अर्जुन ने भगवद गीता का श्रवण किया। हरे कृष्ण। कीर्तन नहीं? तो आप सबको सूचित करना चाहेंगे कि आने वाले रविवार के कार्यक्रम में हम दशहरा जो कल है उसे रविवार के दिन मनाएंगे, इसलिए दशहरा का उत्सव होगा, तो आप उस तैयारी में आइए, और भी आपके मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, उनको बुला सकते हैं। तो हमारा जो आने वाला रविवार का कार्यक्रम है वो दशहरा का उत्सव रहेगा। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। Krishna